मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे अफगानिस्तान और विश्व इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना को या कह लीजिए कि समाचार को देख लेते हैं। और ये जो समाचार है वह पैरालंपिक से जुड़ा हुआ समाचार है। पैरालंपिक, आप देख रहे हैं कि टोक्यो में जो पैरालंपिक गेम्स शुरू हुए हैं उसमें भारत को कितनी सफलता मिल रही है। अब तक की हमारी जो सफलताएं रही हैं डेफिनेटली उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर सफलताएं हम देख रहे हैं। और कल का दिन तो बहुत ही कमाल का दिन था, इसके बारे में अखबारों में आपने पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ओलंपिक हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए हैं जितने कि पैरा ओलंपिक इम्पॉर्टेंट रह गए हो गए हैं। इसलिए कि जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, खासकर मेंस को, तो आप देखें कि उसका जो झुकाव है वो सोसाइटी की तरफ ज़्यादा है, समाज की तरफ ज़्यादा है। समाज का कल्याण, समाज का विकास, समाज में जो उपेक्षित लोग हैं उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम में लेकर के आएं, इनसे संबंधित प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आप जानते हैं कि जो पैरालंपिक है वो इसी तरह के वर्ग या इसी तरह के लोगों के द्वारा खेला जाने वाला गेम है या एक मेला है जो अनफॉर्चुनेटली शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अपंग हैं, जिसे हमने नाम दिया है दिव्यांग। और सच पूछे तो अपनी इस दिव्यता को वो वहां प्रदर्शित कर रहे हैं। और सच पूछिए तो जिस तरीके से इनकी जीवनियां हम लोगों के सामने आ रही हैं, दोस्तों सुन करके, उनके बारे में जान करके, उनके बारे में पढ़ करके रोमांचित हो जाता है हृदय, शरीर रोमांचित हो करके बिल्कुल आप यूं कह लीजिए कि एक जोश से भर जाता है कि यार ये लोग शारीरिक सीमाओं को तोड़ करके और इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, और हम हैं जो कि सब कुछ होते हुए भी लगातार न होने की शिकायतें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि खासकर जो पैरालंपिक्स गेम हो रहे हैं ये एक प्रकार से हिंदुस्तान को ऊर्जावान बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पैरालंपिक में हमारा जो प्रदर्शन है वह किस तरीके का है। यहां आपको दो स्तरों पर तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वह थोड़ा सा एक बड़े स्तर का होगा। बड़े स्तर का कहने का मतलब है कि जैसे अभी जो खिलाड़ी सफल हो रहे हैं, देखिए कुछ गोल्ड मेडल ला रहे हैं, कुछ सिल्वर और कुछ ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आएंगे, तो हम एक आप यूं कह लीजिए कि अनुमान लगा सकते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली वो गोल्ड मेडल के खिलाड़ियों पर होगा। और इसके बाद फिर सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की बात आती है, तो सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के खिलाड़ियों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है वह सच पूछिए तो उन स्टेट्स सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में हो सकती है जहां के वो खिलाड़ी हैं। तो आपको इन दोनों स्तरों पर तैयारी करनी है, टॉप स्तर पर, और साथ ही साथ आपके स्टेट से अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल हासिल करता है तो उसके बारे में भी आपको विशेष रूप से जानना चाहिए। मैं फिलहाल केवल दो जो गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को मिले हैं उनके नाम आपको बताना चाहूंगा। दो तीन बातें आपको इनके बारे में मालूम होनी चाहिए। नाम तो आपको मालूम होना ही चाहिए, किस खेल में उन्होंने सफलता हासिल की है यह भी आपको मालूम होना चाहिए, और तीसरी बात कि ये किस स्टेट से हैं, किस राज्य को बिलोंग करते हैं, यह भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो दो गोल्ड अभी भारत को मिले हैं उसमें एक हैं सुमित अंतिल, जिनको भाला फेंक में मिला है, और दूसरे हैं अवनी लेखरा, जिनको निशानेबाजी में मिला है। तो आगे आपको अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा इसी तरह का स्वरूप देना है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अफगानिस्तान और विश्व के बारे में। यदि आप नियमित तौर पर मेरा ये डेली ऑडियो लेक्चर सुनते हैं तो आपको ध्यान होगा कि मैंने एक लेक्चर केवल इसी पर दिया था, डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत ही, कि अफगानिस्तान और उनके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस तरह के संबंध उनके साथ हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की पूरी इस घटना को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये एक आधारभूत अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी ही चाहिए। आज मैं इसी को बेस बना करके अब इसे विश्व तक फैला रहा हूं कि विश्व का क्या नजरिया अफगानिस्तान के बारे में है, और मुझे लगता है कि काफी कुछ आप जानते भी होंगे। लेकिन आइए फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन तीन दिनों के बीच में जो डेवलपमेंट तीन चार हुए हैं उन पर भी थोड़ी सी हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो लोगों की उतनी समझ में नहीं आ रहा है वो सुरक्षा परिषद के कमेंट को लेकर के है। जो हमारे जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की, उसने इससे पहले जो अपना बयान जारी किया था उसमें स्पष्ट रूप से तालिबान का उल्लेख था, यानी कि आतंकवाद का विरोध करना है और तालिबान का उसमें उल्लेख था। अभी जो बयान जारी हुआ है उसमें तालिबान शब्द को हटा दिया गया है। इसके बारे में अभी कोई बहुत स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, या अगर आ भी गया हो तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरी पकड़ में वह बात नहीं आई है कि ऐसा क्यों किया गया। तो एक बात आपके दिमाग में यह होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको मालूम है कि तालिबान ने कहा था अमेरिका से कि वो अगस्त लास्ट तक अपनी पूरी सेना सब कुछ हटा ले, तो कहा यह जा रहा है कि एक दिन पहले ही अमेरिका पूरी तरह से, आप यूं कह लीजिए, अफगानिस्तान से वापस जा चुका है और इस बीच में जो काबुल एयरपोर्ट है उसके आसपास है रॉकेट से हमले हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका ने पूरी तरह से अपने आप को अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर लिया है। तीसरी बात कि अभी तालिबान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में उसने ये कहा है कि जो तालिबान की सरकार है वह भारत के साथ मित्रता के संबंध बनाए रखना चाहती है क्योंकि हमारे बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, ये भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तीन चार थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी इस तीन दिनों के बीच की। आइए अब हम विश्व के संदर्भ में बात करते हैं। जब आप तालिबान पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो आपको एक देश का नाम पढ़ने को मिल रहा होगा, वह है कतर। कतर, कतर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा एटलस पर जाएं और कतर को लोकेट करें कि वो कहाँ है। देखिए, जहाँ दुबई, ओमान वगैरह देश हैं, ये खाड़ी देश हैं, वहीं कतर भी है, एक छोटा सा राष्ट्र। और अक्सर आप दोहा वार्ता सुनते होंगे, है ना, दोहा की वार्ता। तो ये जो दोहा है ये कतर में ही है। कतर के बारे में आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इस्लामिक देश तो है ही, और ये जो तालिबान है, बेसिकली तालिबान का जो कामकाज होता है, या कह लीजिए इसका जो हेडक्वार्टर है, पूरे का पूरा जो इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, इनका जो ऑफिस है, वो कतर के ही जो दोहा शहर है, कतर का ही जो दोहा शहर है वहां है। तो जाहिर है कि अगर कतर के दोहा शहर में तालिबान का मुख्यालय है, राजनीतिक मुख्यालय है, तो कहीं ना कहीं कतर और तालिबान के बीच जो संबंध हैं उन्हें समझा जा सकता है। एक बात और भी कि इससे पहले अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे आर्टिकल्स में भी कि किस तरह से अमेरिका ने बकायदे तालिबान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत कराई थी, कुछ महीने पहले की बात है। तो वह बातचीत भी बकायदे दोहा में ही हुई थी और कतर ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, मतलब कतर के कारण ही यह बातचीत संभव हो सकी थी। ये विस्तार के साथ मैंने इसलिए आपके सामने यह बात रखी है कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कतर और तालिबान में किस तरह के संबंध हैं। देखिए, जब भारत और तालिबान की हम बात करते हैं तो संबंध तो तनावपूर्ण ही है क्योंकि भारत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो किसी भी आतंकवादी संगठन को समर्थन दे सके, उससे बातचीत करे, और तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। ये केवल भारत की दृष्टि से ही नहीं बल्कि दुनिया की दृष्टि से है। लेकिन कतर के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है और कतर भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि भविष्य में अगर तालिबान और भारत के बीच में कोई बहुत बड़े तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा चुनौतियां पैदा होती हैं, तो हो सकता है कि कतर उसमें एक प्रकार से मॉडरेटर की भूमिका निभाए। तो ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जहां तक दुनिया के दूसरे देशों का सवाल है, देखिए, कुछ राष्ट्रों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो यूरोप के देश हैं वो बिल्कुल तालिबान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़े हैं, पूरा का पूरा यूरोपीय देश उसके विरोध में खड़ा है। अमेरिका का स्टैंड आपको बहुत अच्छे से मालूम ही है, अमेरिका विरोध में है ही। रूस, चीन, पाकिस्तान, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये बकायदे तालिबान के समर्थन में है। रूस थोड़ा बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोस्तों वह है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जिसे हम OIC कहते हैं। यह इस्लामिक देशों का एक संगठन है, सारे के सारे इस्लामिक देश इसके सदस्य हैं ज्यादातर। ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर तालिबान इस्लामिक मूल्यों की बात करता है कि हम इस्लामिक, जो हमारे शरीयत के कानून हैं, जो कुरान हैं, हम उनको लागू करेंगे, इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे, तो सीधी सी बात है कि इस्लामिक देशों का समर्थन इसे मिलना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि ये जो संगठन है OIC, इसने अभी तक तालिबान के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी चिंता ही जाहिर की है, चिंता व्यक्त की है। और ये जो इस्लामिक संगठन है कोऑपरेशन, इनके द्वारा चिंता व्यक्त किया जाना कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि तब दुनिया को ये लग रहा है कि नहीं, आतंकवाद पर नियंत्रण पाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है या महत्वपूर्ण सिग्नल हो सकता है, हमें ये कहना चाहिए। पड़ोसी देशों के बारे में आप देखिए, दूसरे जान चुके हैं कि जो ताजिकिस्तान है वो बकायदे बहुत ज़्यादा अपने सीमा पर चौकसी बरत रहा है। उज्बेकिस्तान है, उससे इसके कोई संबंध बहुत अच्छे नहीं है। ईरान पहले थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसके विरोध में था, लेकिन अब लोगों का कहना है कि पता नहीं क्यों ईरान भी धीरे 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 थोड़ा सा नर्म पड़ने लगा है, यानी कि लग रहा है जैसे कि कहीं ऐसा न हो कि वो तालिबान की तरफ झुक जाए, उसका समर्थन कर दे। ठीक, जहां तक टर्की का सवाल है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है टर्की, तो टर्की और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती है, तो दोस्त का दोस्त क्या हुआ आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि टर्की भी आप यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं तालिबान से जुड़ा हुआ है, उसके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि टर्की की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में या पूरे के पूरे परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और वैसे भी टर्की अपेक्षाकृत एक सम्मानित और आप यूं कह लीजिए कि शक्तिशाली राष्ट्र है। दोस्तों, जहां तक पूर्वी एशिया के कुछ देशों का सवाल है, जैसे कि जिसमें हम फिलीपींस को लेते हैं, इंडोनेशिया को लेते हैं, थाईलैंड वगैरह को लेते हैं, तो यहां भी ये देखा जा रहा है कि जो इस्लामिक चरमपंथी है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली तालिबान के आ जाने से इन देशों का चिंतित होना स्वाभाविक है, और ऐसी स्थिति में ये कभी भी तालिबान के पक्ष में खड़े दिखाई नहीं देंगे। इधर फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया को लें, तो ऑस्ट्रेलिया तो बकायदे जो नाटो की सेना है उसका एक हिस्सा ही था, और उस अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक तरह से यूं कह लीजिए कि युद्ध ही किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि वह तालिबान के समर्थन में खड़ा होगा। तो दोस्तों, ये कुछ स्थितियां मैंने बताई हैं विश्व की जो तालिबान के संदर्भ में हैं। मुझे लगता है कि इससे आपको फिलहाल इससे जुड़ी घटनाओं को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज मैं आपको एक आर्टिकल दे रहा हूं दैनिक जागरण का, उस स्वाभिमान के ऊपर है। ऐसे राइटिंग की दृष्टि से यदि आप चाहें तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: प्रतीक मिश्रा, नीलकंठ भट्ट, प्रिया गुप्ता, KB मीना, उत्कर्ष कश्यप फरीदपुर उत्तर प्रदेश से, और शोभित सिंह सिंगुता हिमाचल प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।